पेरिस और अदब का जो गहरा ताल्लुक है ये तो सदियों पर मुहित है। आज हम जरा इस पर तफसील से बात करते हैं कि ये शहर कैसे मतलब एक इल्मी मरकज से बढ़कर दुनिया भर के अदीबों के लिए एक मिग्नातीस बन गया।
जी बिल्कुल, और ये सफ़र आप देखें शुरू होता है काफ़ी पहले से, 12वीं सदी से, और फिर हम देखते हैं कि कैसे मुख्तलिफ अदवार, शख्सियात और जगहें इसकी अदबी पहचान बनाती गईं।
तो शुरुआत 12वीं सदी से हुई यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से।
जी, पेरिस की जो फ़िक्री ज़िंदगी है उसका बाकायदा आगाज़ हम यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से जोड़ सकते हैं। ये उस वक्त शुमाली फ्रांस की वाहिद यूनिवर्सिटी थी। और एक और दिलचस्प बात यह है कि शाही दरबार ने भी पेरिस की बोली को अपना लिया था, इससे भी उसकी इल्मी हैसियत को आप कह लें तकवीत मिली।
अच्छा, तो जबान और इल्म दोनों का मरकज बन गया। फिर 16वीं सदी आई, ह्यूमनिज्म का दौर, उसका क्या असर रहा?
यकीनन, ह्यूमनिज्म और जो बढ़ती हुई सियासी मरकजियत थी उसने पेरिस को फ्रांसीसी सकाफत का आप समझे महवर बना दिया।
जी,
और इसी चीज को और पक्का करने के लिए कार्डिनल रिशेलियो ने 1635 में वो मशहूर जमाना अकेडमी फ्रांसिस कायम की।
ओह, अकेडमी फ्रांसिस।
जी जी
बिल्कुल।
इसका मकसद था फ्रांसीसी जुबान को एक मेयार देना। तो 17वीं सदी के वस्त तक आते आते पेरिस और इसके जो अदबी सैलोन थे वो फ्रांसीसी अदब का तकरीबन वाहिद मरकज बन चुके थे।
ये सैलोन्स जिस इनका जिक्र बहुत आता है, ये क्या थे असल में?
देखें, ये सैलोन दरअसल घरों में होने वाली निजी महफिलें थीं, जहां दानिश्वर, अदीब, फनकार सब इकट्ठे होते थे।
अच्छा।
वहीं बहसें होती थीं, ख्यालात का तबादला होता था, नए अदबी रुझानात अक्सर यहीं से शुरू होते थे।
यहां आकर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, खास तौर पर लुई चौधाम के दौर में। सुना है बादशाह खुद अदीबों की सरपरस्ती करते थे।
हाँ, ये बात दुरुस्त है, बादशाह की सरपरस्ती अहम थी, लेकिन एक और चीज हुई। जब शाही दरबार वर्साई मुंतकिल हो गया ना
जी,
तो उसकी चकाचौंध ने पेरिस के सैलून्स की रौनक थोड़ी आप कह ले मांद कर दी। बहुत से अदीबों की तवज्जो दरबार की तरफ हो गई।
तो मतलब सैलून कुछ कमजोर पड़ गए
किसी हद तक, लेकिन पेरिस की अपनी जो फिक्री जिंदगी थी वो फिर भी चलती रही। जैसे 1680 में कॉमेडी फ्रांसे का कयाम हुआ, फ्रांस का कौमी थिएटर, ये भी तो पेरिस में ही हुआ।
सही। अच्छा, फिर आया रोशन ख्याली का दौर, 18वीं सदी। इसमें क्या हुआ, क्या मरकज वापस पेरिस आया?
जी बिल्कुल, 18वीं सदी में सकाफती मरकज दोबारा पेरिस ही बन गया। हालांकि लुई 15वां और लुई शाहिजदां के अदब में कोई खास जाती दिलचस्पी नहीं थी।
अच्छा
जी, इसके बावजूद पेरिस के सैलोन अपने उरूज पर थे, वो एक तरह से फिक्री पावर हाउस बन गए थे। मिसाल के तौर पर मादाम दे लैम्बर्ट का सैलोन था, वहां मॉन्टेस्क्यू, मारिवो जैसे लोग आते थे।
वाह।
और मादाम टेंसिन के यहाँ आपको फॉन्टेनेल और एबे प्रिवॉस मिलते थे।
और इसी दौर के वॉल्टेयर भी तो पेरिस की पहचान माने जाते अपने खास अंदाज की वजह से।
बिल्कुल, वॉल्टेयर का वो हल्का फुल्का तंजिया अंदाज वो पेरिस की उस फिजा का हिस्सा था। लेकिन दूसरी तरफ जॉन जाक रूसो थे।
हाँ, रूसो वो तो बिल्कुल उल्ट थे, शहर से ही बेजार लगते हैं।
जी, वो तो पेरिस को कहते थे वील दु ब्रुई दु फ्यूमे इदु बू, यानी शोर, धुएं और कीचड़ का शहर। वो शहरी जिंदगी, उसकी मसनूई चमक दमक, समाजी ऊंच नीच, उन सबके सख्त नाकिद थे।
अच्छा।
उन्हें फितरत पसंद थी, सादगी पसंद थी, तो ये शहर का शोर शराबा उन्हें पसंद नहीं था। वो कुछ अरसे के लिए शहर छोड़कर मॉन्टमोरेंसी भी चले गए थे, खैर बाद में वापस आ गए 1770 में।
और इसी शहरी जिंदगी की एक झलक हमें बाद में एमिल जोला की किताब लॉ वॉन्त्र दुपारी में भी मिलती है।
जी, ले वॉन्त्र दुपारी, वो पेरिस के जो मरकजी बाजार थे हॉल के इलाके, वहां की जिंदगी की बड़ी अच्छी अक्कासी है।
ठीक है, तो ये तो हुई 18वीं सदी की। 19वीं सदी में इनकलाब के बाद क्या बड़ी तब्दीलियां आईं अदब में?
इनकलाब के असरात तो बहुत गहरे थे, अदब आप कह लें ज्यादा जमहूरी हो गया।
जमहूरी किस लिहाज से?
मतलब मौजूआत के लिहाज से भी और पढ़ने वालों के लिहाज से भी। अब सिर्फ अशराफिया की कहानियां नहीं थीं, आम आदमी, सामाजिक मसले, ये सब अदब का हिस्सा बनने लगे।
सही।
और जो इस सदी की बड़ी सियासी और सामाजिक तहलीकें थीं, रोमानवियत, हकीकत पसंदी, वो सब अदब में साफ नजर आती हैं।
और 20वीं सदी, उसमें तो पेरिस एक बैनुल अक्वामी मरकज बन गया है ना?
बिल्कुल, 20वीं सदी में तो जैसे पूरी दुनिया के अदीब और फनकार पेरिस खिंचे चले आए। शहर के मुख्तलिफ इलाके अदबी मरकज बन गए। मॉन्ट पार्नास को देखें।
जी मॉन्टपार्नास।
वहां मैक्स जैकब, लियों पॉल फार्ग जैसे फ्रांसीसी अदीब तो थे ही, बहुत से गैर मुल्की भी थे। फिर पैलेस रॉयल में जॉन कुकटो और कोलेट रहे। सेलिन ने अपने बचपन का इलाका पासा च्वाइजेल, इसको अपने नॉवेल मॉर्थ अक्रेदी में बयान किया, और मॉन्टमार्थ्र तो मार्सल एमे के नावलों का जैसे मुस्तकिल पस मंजर है।
और वो जो 1920 की दहाई थी, दो जंगों के दरमियान का अरसा, बहुत से अमरीकी अदीब आए, हेमिंग्वे, मिलर, उन्हें यहाँ क्या खास बात लगी?
इसकी कई वजूहात थीं। एक तो जंग के बाद यूरोप में एक नई किस्म की आज़ादी का एहसास था, फिर पेरिस उस वक्त निस्बतन सस्ता भी था।
अच्छा।
और सबसे बढ़कर तख्लीकी आज़ादी थी। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, हेनरी मिलर, एनाइस नन, इन सब ने यहाँ रहकर लिखा, और पेरिस उनके काम में नजर भी आता है।
और कुछ लोग जैसे डी.एच. लॉरेंस या जेम्स जॉयस, वो भी यहीं आए?
जी, वो शायद यहाँ एक उम्मीद, एक तरह की पनागाह की तलाश में आए। जॉयस ने तो अपना मशहूर नावल यूलिसिस पेरिस में ही शाया करवाया था।
वाह। अच्छा, फिर दूसरी जंग अजीम के बाद क्या हुआ? सेंट जर्मन दे पेरे का बहुत जिक्र सुनते हैं।
जी हाँ, जंग के बाद सेंट जर्मैन दे प्रे नया मरकज बन गया, खास तौर पर वजूदियत का फलसफा और उससे जुड़े अदीब।
सार्त्र और सिमोन दी बोवा?
बिल्कुल, जॉन पॉल सार्त्र, सिमोन दी बोवा, बोरिस वियान, जॉक प्रिवेर, ये सब लोग वहां के कैफे जैसे कैफे दे फ्लोर और ले दो मागो में बैठते थे। वो एक पूरा माहौल था, बहस मुबहसे का, नई सोच का।
तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये अदबी मरकजियत शहर के अंदर ही घूमती रही, पहले लातीनी क्वार्टर, फिर मारे, फिर मॉन्टपार्नास, फिर सेंट जर्मन।
बिल्कुल, शुरुआत हुई यूनिवर्सिटी के गिर्द लातीनी क्वार्टर से, आज भी ज्यादातर पब्लिशिंग हाउस वही हैं। फिर 18वीं सदी में मारे के सैलोन, 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में मॉन्टपार्नास, खास तौर पर वो कैफे ला क्लोजरी दे लीला बहुत मशहूर था।
जी।
और फिर जंग के बाद सेंट जर्मैन दे प्रे। आज तो आप पेरिस के किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, आपको किसी ना किसी अदीब के नाम की तख्ती जरूर मिल जाएगी।
तो इस सारे जायजे का मतलब लुबेलुबाब क्या है, हम क्या कह सकते हैं?
यही कि पेरिस का अदबी सफर बहुत तवील और मुतनव्वे है। क़रून वुस्ता की इल्मी बुनियादों से शुरू होकर शाही दरबार, सैलोन कल्चर, इनकलाब, फिर दुनिया भर के अदीबों की आमद, ये शहर मुसलसल बदलता रहा है और अदब को अपने साथ बदलता रहा है। और ये हमें एक आखिरी, शायद सोचने वाले नुक्ते पर लाता है।
वो क्या?
कि ठीक है, ये अदबी मराकज बदलते रहे, लातीनी क्वार्टर, मारे, मॉन्टपार्नास, सेंट जर्मन, लेकिन आखिर पेरिस में मजमू तौर पर ऐसी क्या खास बात है? वो कौन सी कशिश है जो सदियों से इतनी जिंदा और इतनी मुतहरिक अदबी जिंदगी को पालती पोसती आ रही है?
हाँ, ये अहम सवाल है, क्या चीज है जो इसे इतना खास बनाती है?
शायद ये यहाँ की आजादी इजहार है, वो सकाफती रंगारंगी है, या बस वो एक नाकाबिले बयान सी फिजा है जो तख्लीक कारों को हमेशा से अपनी तरफ खींचती आई है। इस पर वाकई मजीद सोचा जा सकता है।